बनकर जीवन बना अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा आंसू मेरे मोती बन चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन
ओम शांति। एक सर्द रात, बारिश की बूंदा बूंदी, कैलिफोर्निया के शहर में किसी चर्च में अर्धरात्रि को फोन की घंटी बजती है। वहां के जो मुख्य पादरी हैं, क्योंकि रविवार था, दिन भर की थकान के बाद अभी सोए ही हुए थे कि वो फोन बजा। फोन एक अस्पताल से था जो कुछ दूरी पर था। वहां की जो नर्स थी वो कह रही थी कि फादर, एक मरीज मरने को है, आप क्या आ सकते हैं उसे देखने? अभी कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो वो फादर सोचते हैं कि इतनी आंधी और तूफान में मैं कैसे जाऊं, क्योंकि तूफान बढ़ चुका है तब तक। फिर भी सोचता है कि कोई देह छोड़कर जा रहा है, मुझे जाना चाहिए। और वो बड़ी मुश्किल से उस अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां उस मरीज के कमरे में जाते हैं। जैसे ही उस मरीज के कमरे में जाते हैं, वो मरीज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, गालियां देने लगता है और उनको कहता है कि यहां से निकल जाओ, मेरे करीब भी मत आना। वो फादर बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अब वापस चला जाऊं, पर देखते हैं कि तूफान बहुत बढ़ गया है। मैं थोड़ा देर और रुक जाता हूं और थोड़े देर रुकने के बाद सोचते एक बार फिर कोशिश करूं, क्या कहता है देखूं। तो फिर कमरे में जाते हैं, फिर से वो मरीज जोर जोर से चिल्लाता है कि चले जाओ यहां से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। वो फिर बाहर आ जाते, कुछ घंटे और रुकते हैं, पर फिर संकल्प आता है कि एक बार फिर उस मरीज से जाकर मिलूं। पता नहीं कब शरीर छोड़ दे, ऐसी उसकी बीमारी है, ऐसी अब उसकी स्थिति है। वो फिर अंदर जाते हैं, तब तक वो मरीज थोड़ा शांत हो चुका होता है और उनसे कहता है कि मेरा जीवन बहुत ही दुखी है, पिछले 40 साल से मैं दुखी हूं, एक ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई है कि उस घटना ने मुझे आत्मग्लानी से भर दिया है, अपराध भाव से भर दिया है, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाया हूं, मेरे द्वारा एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। और वो पूछते हैं उससे, ऐसा तुमने क्या कर दिया? वो कहता है कि बहुत समय पहले, 40 साल पहले, मैं किसी रेलवे स्टेशन पर काम करता था। एक बार एक ट्रेन जब आ रही थी, क्रिसमस का वो समय था, और मेरे द्वारा गलत सिग्नल दिया गया, उस वजह से वह ट्रेन पटरी से उतर गई और सीधा एक कार से जाकर टकराई। उस कार में एक महिला थी और उसके दो बेटे थे, और तुरंत उसी समय उस महिला की और उसके दोनों बेटे मर गए। ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई और तब से लेकर मैंने अब तक अपने आप को माफ नहीं किया। जीवन मेरा त्रस्त हो चुका है, विवाह नहीं किया, अकेले रहा हूं, जीवन दुखों से भरा हुआ है, कभी हंस नहीं सका, सो नहीं सका, कभी रो भी नहीं सका। उस पादरी ने पूछा, वो ट्रेन कौन सी थी। उस पादरी ने पूछा वो दिन कौन सा था। उस पादरी ने पूछा वो तारीख कौन सी थी। क्यों पूछा होगा? वो पादरी उस व्यक्ति से कहता है, उस ट्रेन में एक छोटा बच्चा और भी था। जो कि बच गया था और उसे किसी ऐसे सत्संग का सहारा मिल गया था बाद में कि उसका जीवन दिव्य बन गया। उसका जीवन प्रेम की एक अविरल धारा बन गया और वो बच्चा आज और वो बच्चा मैं हूं। और मैं इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पार्डन यू। मैं तुम्हें आज क्या करता हूं? क्षमा करता हूं। ईश्वर की तरफ से आज तुम्हें यह पादरी क्षमा नहीं कर रहा है, परंतु तुम्हें वह बच्चा क्षमा कर रहा है। कौन सा बच्चा? जिसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका था और वो व्यक्ति पहली बार सोया, चैन की नींद सोया और अंतिम नींद सोया। तो क्या हो गया यहां पर? कमजोर आत्माएं, अप्राप्त आत्माएं, किसी न किसी संस्कार के वशीभूत आत्माएं इस संसार में है और तुम्हारा क्या कर्तव्य है? हे धर्मात्माओं, क्या कह रहे हैं बाबा? हे धर्मात्माओं, धर्म की स्थापना करने वाली आत्माओं, हे धर्मात्माओं, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारी मुख्य धारणा क्या है? दया, क्षमा, दयालु बनो और कृपालु बनो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया को न छोड़िए। हर धर्म में ज्ञान और योग की मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम कैसी है? अलग अलग है, परंतु एक बात सब में समान है, जिसे बौद्ध धर्म ने करुणा कहा, जिसे क्रिश्चियनिटी ने ग्रेस कहा, ब्लेसिंग कहा, जिसे हिंदू धर्म ने दया कहा और कृपा कहा, जिसे इस्लाम ने रहम कहा। हर धर्म ने जिसे माना है, हर धर्म की जो आधारशिला है, हर धर्म जिस पर अवलंबित है, वह मुख्य धारणा कौन सी है? रहम, करुणा, कृपा, दया, मर्सी, कंपैशन। तो आज कौन किससे मिलने आया है? दया के सागर आए हैं। किससे मिलने? मास्टर दया के सागर से मिलने आए हैं। कौन सी सभा देख रहा है, वो सिंगल नहीं डबल सभा देख रहा है। जो सभा में उपस्थित है केवल उनको नहीं देख रहा है, जो साकार में है उनको नहीं देख रहा है, परंतु जो याद स्वरूप है, जो देश विदेश में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं एक ही लगन है कि आज मधुबन में क्या हो रहा है। दूर दूर बैठे वह बच्चे, ऐसी डबल सभा, ऐसी साकारी सभा और ऐसी आकारी सभा को बाबा देख रहा है, हर्षित हो रहा है ऐसी सभा को देखकर, ऐसी दयालु आत्माओं को देखकर, ऐसी कृपालु आत्माओं को देखकर, जिनका भक्त भी गायन कर रहे हैं, जिनको ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, श्रेष्ठतम आत्माओं को, जिनको भक्त भी बाप दादा सहित भक्त भी याद करते हैं, और क्या गायन करते हैं, दयालु कृपालु कोमलचित अतिदीन दयाला बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, जिसका हृदय कोमल है। कोमलचित अतिदीन दयाला बिनु कारण, कोई कारण नहीं है, अकारण कृपा है उसकी, उसकी अनुकंपा जो बरस रही है वो कॉजलेस है, कॉजलेस कंपैशन एंड कॉजलेस मर्सी, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, ऐसा जो कृपा निधान है, ऐसा जो कृपावान है, ऐसा जो कृपावंत है, ऐसा जो दया निधान है, करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, उसको भक्त याद कर रहे हैं। जो शिला बन चुकी है उस पर कृपा करने वाला, जो जन जन से इंतजार कर रही है, अधमते अधम नीच अति नारी याद कर रही है, इंतजार कर रही है कि वो आएंगे। सब मजाक उड़ा रहे हैं उसकी, पर उसे विश्वास है कि राम आएंगे। ऐसी शिला जो बनी है उसे भी इंतजार है। चरण रज चाहती कृपा करो रघुवीर, हे राम कृपा करो, तो वो कृपा निधान परमात्मा और उसके साथ हम कृपालु और दयालु आत्माएं, तो बाबा आज ऐसी सभा को देख रहे हैं। दया धर्म का मूल है, धर्म अर्थात ही दया। जिस हृदय में दया नहीं वह हृदय धार्मिक नहीं हो सकता, धर्मी नहीं हो सकता, रिलीजियस उसे नहीं कहा जा सकता। धर्म की कसौटी ही क्या है, दया है। ऐसा हमारा हृदय, स्वयं से पूछो, आज बाबा ने कहा सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, ऐसा हमारा हृदय दयालु है, कृपालु है, देने वाला है, लेने की कोई चाहना तो नहीं है। हे इच्छा मात्रम अविद्या आत्माओ, हे दया से संपन्न आत्माओ, हे दया के भरपूर भंडार आत्माओ, प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। स्वयं के गिरेबान में झांक कर देखो, ऐसी दया, ऐसी दया का झरना निर्झरित हो रहा है हृदय में, ऐसा अविरल प्रवाह, अनइंटरप्टेड फ्लो बह रहा है हमारे हृदय में, जिसे मनुष्य दया कहता है। शायद कई कई जगह पर उसका गलत अर्थ भी लिया हुआ है। विदेश में एक लेखक हुआ है लियो टॉल्स्टॉय, रूस में, उसने अपनी आत्मकथा में अपनी मां का वर्णन किया है। लिखता है मॉस्को में जब बहुत ठंड थी, बर्फ गिरता था, और वो अपनी मां का वर्णन करता है कि मेरी मां इतनी दयावान थी, इतनी करुणा से भरी थी, क्या मैं उसका वर्णन करूं। वो झार फैमिली से, राजाओं के परिवार से थी, और इतनी दयावान थी कि जब वो कोई नाटक देखने जाती थी तो उसके साथ एक उसकी मेड, उसकी दासी साथ में जाती थी, रुमाल लिए हुए। इतने सारे रुमाल लेकर जाती थी कि जब वो नाटक देखती थी और नाटक में कोई पात्र रोता था और कोई पात्र यदि मरता था, यदि किसी को कोई धोखा देता था, यदि किसी के साथ अत्याचार होता था, तो मेरी माँ जार जार रोती थी। इतना रोती थी, इतना रोती थी कि बाजू में जो उसकी दासी थी वो बहुत सारी नैपकिन कपड़े अपने साथ लेकर आती थी। ऐसी दयावान मेरी माँ थी, ऐसा करुणा से उसका भरा हुआ हृदय था। परंतु बाहर वो अपना रथ रोक कर रखती थी और उस रथ में, उस बग्गिया में, उस बग्गी में जो रथवान होता था उसको आदेश था वहीं रुकना है जब तक कि वो मालकिन बाहर ना आ जाए। उस सर्दी में वो वहीं खड़ा रहता था या बैठा रहता था, उसको आदेश नहीं था वहां से हिलने का। कभी कभी तो ऐसा भी हो गया कि वो रथवान वहां ही खड़ा है और खड़ा खड़े मर गया। वो रथवान वहां पर बैठा है इतनी सर्दी में मर गया। वो वहां से उसकी माँ बाहर आती थी और जब देखती थी वो मर गया, कहती थी इसको हटाओ और दूसरा रथवान एक खड़ा है उसको रिप्लेस करने के लिए। लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं अपने जीवन के चरित्र में कि मैं सोचता था कि मेरी माँ बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु है, पर ये कैसा उसकी ये कैसी दया थी कि एक तरफ जीवन के इस विराट नाटक में कोई मर चुका है, उसके हृदय में कोई भी पीड़ा नहीं, और वहां पर वो पात्र जीवन के छोटे नाटक में रो रहे, हंस रहे, उसको प्रभावित करते थे। कैसी ये झूठी दया और कैसी ये झूठी अनुकंपा थी। मैं तो समझता था कि मेरी माँ बहुत दयालु है, परंतु ये दया थी ही नहीं, ये भ्रम था दया का। वो अपने उसी ऑटोबायोग्राफी में एक वाक्य लिखता है, We are blind to those who are around us। जो हमारे आसपास हो रहा है, जो हमारे आसपास व्यक्ति है, हम उन पर दया नहीं करते हैं। हम किन पर करते हैं? दूर सुदूर जो आत्माएं हैं, कहीं भूकंप हुआ हम अमृत वेले बैठते हैं और उनको दया, उनको सकाश देते हैं। सकाश दिया, काम पूरा हुआ। कहीं भूकंप आया, सकाश दिया। कहीं आपदा आई, सकाश दी। कहीं भूचाल हुआ, कहीं आतंकी हमला हुआ, सकाश दी, काम पूरा हुआ। कहीं दलितों पर अत्याचार हुए, अभी अभी हुआ ना ऊना गुजरात, सकाश दी, काम पूरा हुआ। We are dead and we are blind and we are deaf to the people around us। पर जो हमारे आसपास है उनका क्या? उसी आत्मकथा में आगे वो एक और एक संस्मरण लिखते हैं। एक बार सुबह सुबह मैं टहलने गया, एक भिखारी मेरे सामने आ गया। मैंने अपने जेब में हाथ डाले पर देखा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, क्योंकि सुबह का समय था। तो मैंने उस भिखारी से कहा, मित्र मुझे क्षमा करना, मेरे पास इस समय तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत जरूरतमंद हो, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो भिखारी कहता है कि तुमने इतना जो मुझे कह दिया आज तक, इस जीवन में किसी ने भी मुझे मित्र नहीं कहा। तुमने ये जो मुझे मित्र कह दिया, यू कॉल्ड मी फ्रेंड, आगे वो लिखते हैं कि पता नहीं उसके हृदय में क्या घटित हो गया, पता नहीं कौन सी घटना उसके हृदय में घटित हुई, कि उसका जीवन ही जैसे परिवर्तित हो गया उस भिखारी का। ऐसा आत्मसंतोष उसके चेहरे पर आ गया। तो हर धर्म का मूलाधार क्या है? दया, करुणा, अनुकंपा, कंपैशन, मर्सी। बाबा ने कहा है स्वयं को चेक करो, स्वयं ही देखो, मेरे हृदय में ऐसी दया है। और जो दयावान होगा उसकी कुछ क्वालिटीज बाबा ने सुनाई है, तीन। कौन कौन सी? एक तो मनसा में कैसा होगा वो? निराकार। वाचा उसकी कैसी होगी? निर्विकार। और कर्म कैसे होंगे? निरअहंकारी। निरअहंकारी। बाबा ने एक जगह अपना ही उदाहरण दिया है, वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी का सबसे पहला स्वरूप कौन सा है? वर्ल्ड सर्वेंट का। उसे कोई अहंकार नहीं। मनसा में निराकार अर्थात आत्माभिमानी स्थिति, अर्थात अशरीरीपन की साधना, अर्थात जो ऐसी साधना कर रहे हैं, अर्थात जो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी है और इस साधना में लगे हुए हैं, वही केवल दयावान है, बाकी नहीं हो सकते। वो फिर झूठी दया है, ईगो वाली दया है। ईगो, जिसको इंग्लिश में फोटो ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। फोटो ऑफ, जैसे कहीं आपदा होती है तो राजनेता पहुंच जाते हैं ना, और फोटो होती है वहां पर, फोटो अपॉर्चुनिज्म, फोटो ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, वो झूठी दया है। वो वास्तविक दया नहीं है, दिखावा है वो दया का, आडंबर है, झूठ है, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। ऐसी दया नहीं, निराकार। मनसा में निराकार, वाचा में निर्विकार। मैंने नहीं किया टीचर से मुलाकात, मैंने नहीं किया, बाबा ने किया, बाबा ने कराया। तुम्हारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहेगा तो क्या हो जाएगा? सभी बाप के बन जाएंगे। तुम में वो उमंग हो कि हम बाप के साथ है और हम बाप के साथी है, तो दूसरों में भी वह उमंग आएगा। मनसा में निराकार, वाचा में निर्विकार और कर्मणा में निरअहंकार। ऐसी हमारी स्थिति हो, कर्म कर दिए और भूल गए, कोई उसका अहंकार नहीं, कोई उसका वर्णन नहीं, जैसे पंछी आकाश में उड़ता है कोई निशान नहीं छोड़ता है, ऐसे कर्म किए और भूल गए, ऐसे कर्म किए और अर्पण कर दिए। ऐसी निरंकारी अवस्था, सेवाएं की और अर्पण कर दिए, उसका कोई वर्णन नहीं। ऐसी अगर दया करोगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाएगा ये तो बताएं। जो दयावान है उसकी क्वालिटीज ये अगर है तो ही दया कर सकोगे। अगर दया कर दी तो छह बातें होगी। कौन कौन सी छह बातें? जो कि कड़े संस्कार वाली आत्माएं हैं, पानी से पत्थर, पत्थर से क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगी। उसके भी पत्थर जैसे संस्कार, पाषाण हृदय जो है, कठोर हृदय जो है, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हुआ है, यज्ञ में तो हुआ है ना। यज्ञ के कितने विरोधी थे, सारे ही कैसे हो गए? पिघल गए ना। कैसे हुआ? ऐसा दया का भाव, बाबा ने सभी के प्रति ऐसा दया का भाव रखे। निंदक नियारे राखिए, निंदक नियारे राखिए, कबीर कहता है, जो हमारी निंदा करते हैं, ग्लानी करते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, विरोध करते हैं, अपमान करते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, रुलाते हैं, ऐसी ही आत्माओं के प्रति क्या करना है? दया। जो हमारी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मदद करते हैं, उनके प्रति दया रखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दया किनके प्रति रखनी है? जो हमारी टांग खींचते हैं, जो विरोधी है, वो क्या बन जाएगा? गले में हार डालने वाले बन जाएंगे। जो अपोजिशन वाले हैं, वो क्या बन जाएंगे? पोजिशन में स्थित हो जाएंगे। जो क्रोधी है, क्रोध अग्नि क्या हो जाएगी? योग ज्वाला बन जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? फिर अपने आप से पूछो। जो कड़े हिसाब किताब है, वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और नए संबंध छूट जाएंगे। ऐसी ये सारी छह बातें हो जाएगी। जो स्वभाव की टक्कर करने वाले हैं, वो क्या बन जाएंगे? ठाकुर। ऐसी हमें सेवा करनी है, ऐसी मानवता की सेवा करनी है। रहम दिल बनकर मानव सेवा ही माधव सेवा बन जाए। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। इस जीवन में बचपन से लेकर अब तक, द्वापर से लेकर अब तक, संगम युग के इस जन्म से लेकर अब तक, जिन जिन आत्माओं ने हमें दुख दिया है, जिन जिन आत्माओं ने हमें सताया है, जिन जिन आत्माओं ने हमें पीड़ा पहुंचाई है, जिन जिन आत्माओं ने अपशब्द बोले हैं, अपमानित किया है, उन सभी आत्माओं को हम सूक्ष्म वतन में इमर्ज करेंगे। हो सकता है वो आत्माएं आज हमारे ही बाजू में बैठी है, हो सकता है वो आत्माएं इसी मधुबन में है, हो सकता है वो आत्माएं इसी आबू में है, हो सकता है वो आत्माएं इसी भारत में है, हो सकता है वो आत्मा इसी ही भूमंडल में कहीं है। उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना है। और क्या करना है? क्या करना है? उन्हें क्षमा कर देना है, बेशर्त क्षमा कर देना है, अनकंडीशनल पार्डन, बिना किसी शर्त के। केवल क्षमा नहीं करना है, उसके भी आगे एक स्टेप, अपने आप को ऐसे प्रेम की धारा से भर देना है कि अब यह स्मृति भी नहीं रहे कि उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा किया। स्वयं भी ऐसे अब स्वयं को प्रेम से भर देना और उन आत्माओं को भी ऐसे ही प्रेम से भर देना। ओम शांति। सभी स्थिर बैठ जाए। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक तेजोमय आत्मा हूं। देह से अलग। पूर्वज आत्मा, इस अस्थि पंजर को छोड़, सूक्ष्म देह सहित मैं आत्मा, व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश से परे जा रहा हूं ऊपर, तारागण से पार, इस भूमंडल से परे, सूर्य चांद और सितारागण से पार, निहारिका से पार, सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सम्मुख बाबा के नैनों से अनंत प्रेम की धाराएं मुझे आत्मा में समा रही है। संपूर्ण दया का, संपूर्ण प्रेम का मेरा ये स्वरूप, देख रहा हूं मेरी आंखों के सामने वो सभी आत्माएं जिन्होंने कभी मुझे दुख दिया था, पीड़ा पहुंचाई थी, अपशब्द बोले थे, दुर्व्यवहार किया था, अपमान किया था, मेरी ही मृत्यु का कारण बनी थी किसी जन्म में, वो सभी आत्माएं इन आंखों से देख रहा है, बाबा की अनंत किरणें प्रेम और आनंद की मुझ पर पड़ रही है। हे आत्माओं, सभी देव कुल की महान आत्माओं, अपने संपूर्ण हृदय से मैं आप सभी को क्षमा करता हूं, बेशर्त क्षमा। सभी को हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। मेरी नैनों से प्रेम की किरणें निकल सभी आत्माओं पर पड़ रही है, जन जन के कड़े हिसाब पूर्ण हुए, वो सभी आत्माएं मेरे सहित आनंद से आपूरित हो गई है। निर्भार निर्बोझ अवस्था, मेरा सारा ही बोझ समाप्त हुआ, वो सभी आत्माएं भी हर्षित हो गई। मैं फरिश्ता पुनः इसी आनंद स्थिति में, इसी आनंद मगन स्थिति में वापस धीरे धीरे मधुबन की इस पावन भूमि में प्रवेश कर रहा हूं, फिर से इस तन में मैं आ गया। ओम शांति। जो आत्माएं ऐसा अभ्यास रोज करेगी, एक समय आएगा कि वास्तव में उन आत्माओं के प्रति हमारे मन में जो सूक्ष्म घृणा है, सूक्ष्म नफरत है, सूक्ष्म ईर्ष्या है, वह भी विलीन हो जाएगी और उस समय वास्तव में वास्तविक पुरुषार्थ चालू होगा। जब हमारा मन इस तरह से सूक्ष्म घृणा से मुक्त हो जाता है, सूक्ष्म बदले की भावना से मुक्त हो जाता है, तो सभी आत्माओं के प्रति, बाबा ने कहा उन आत्माओं के प्रति भी जिनको इच्छा नहीं है, उनके प्रति भी क्या करो, इच्छा से, शुभ इच्छा से दान करो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी। हे धर्मात्माओं, किसके प्रति दया करो, स्वयं के प्रति दया करो, पहली दया। दूसरा, ब्राह्मण परिवार के प्रति, ये सबसे मुश्किल काम है। और तीसरा, विश्व की आत्माओं के प्रति दया करना है, सभी के प्रति दया, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, कोई भी हो, चाहे हमारे घर से है चाहे बाहर का है, कोई भी हो, सभी के प्रति दया, सभी के प्रति अनुकंपा का भाव, जैसे दिखाया है भारत के इतिहास में एक महान विचारक, एक धार्मिक व्यक्ति हुआ रामानुज। 17 बार अपने गुरु के पास गया, गुरु ने मंत्र नहीं दिया। जब 17 बार पूरा हुआ, 17वीं बार जो गुरु ने मंत्र दिया और मंत्र देते समय कहा कि इसको किसी को मत सुनाना, यह ऐसा मंत्र है कि जो इसकी साधना करेगा भगवत पद को प्राप्त होगा। वो आता है वापस अपने गांव श्रीरंग तमिलनाडु, तमिलनाडु में आता है और सोचता है क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि उसका हृदय कहता है मैं ये सबको बताऊं। रात भर बेचैन और सुबह उठता है और निर्णय करता है कि अगर इस मंत्र से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है तो मैं अकेला ही क्यों प्राप्त करूं। सुबह सुबह उठता है और जाता है मंदिर के ऊपर, खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, पुकारता है कि आ जाओ सभी और ले जाओ इस मंत्र को, सबको बांट देता है। जब गुरु को ये पता चलते हैं, पता चलता है, बड़े नाराज होते हैं, आते हैं और उसको बहुत कुछ कहते हैं और वो उनसे केवल एक ही बात कहता है कि यदि मेरा ऐसा करने से मुझे नरक भी मिल जाए तो भी मैं जाने के लिए राजी हूं, परंतु यदि मेरी वजह से इतनी सारी आत्माओं का कल्याण होने वाला है तो मैं ये करने के लिए भी राजी हूं। ऐसा विशाल हृदय वासुदेव, उदार चरितानाम तु वासुदैव कुटुंबकम्। उदार चरितानाम, इतना बड़ा हृदय हो। महाराष्ट्र में संत हुए हैं ज्ञानेश्वर, अपनी ज्ञानेश्वरी में उन्होंने एक जगह लिखा है, ऐसी जो आत्माएं हैं, सला कल्पतरुंचे आरव। कल्पतरु जो होता है ऐसी आत्माएं, आरव जंगल है, एक कल्पतरु नहीं, एक कतल कल्पतरु के पास अगर बैठ जाओ तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। सला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। अगर एक चिंतामणि मिल जाए तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। चेतना चिंता मणिन से गाव, ऐसी आत्माएं क्या होती है? गाव है। सला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषाचे। जो भी बोलते हैं वो अर्णव है, सागर है, समुद्र है, किसका? अर्णव पीयूषाचे। चंद्रमे जे अलांछन, चंद्रमा है परंतु लांछन रहित, मार्तंड जे तापहीन, सूर्य है परंतु ताप रहित। ऐसी आत्माओं की उपस्थिति इस संसार में, इस संसार के लिए वरदान है और वो आत्माएं हम हैं, दया और कृपा से भरी हुई करुणा के भंडार हम हैं, इच्छा मात्रम अविद्या आत्माएं। फिर से इसी समान में स्थित हो जाओ कि हम दयालु और कृपालु आत्माएं हैं, सब पर दया करने वाले, सभी पर, विश्व की वो सभी आत्माओं को इमर्ज करो जो दुखी है, अशांत है, तड़प रही है, कमजोर है, परवश है, और उन सभी आत्माओं पर कृपा करना और उन्हें आह्वान करना और उन्हें परमात्मा परिचय देना और आह्वान करो कि हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ, परमात्मा आ चुका है। फिर से सूक्ष्म वतन में जाकर आत्माओं को आह्वान करो अपने संपूर्ण दया के स्वरूप में स्थित होकर।
प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है,
हमारे ही कल्प, हमारे दातापन के संस्कार है। संगम पर मास्टर दाता, सतयुग में देवता, और द्वापर से फिर जड़ चित्र भी देने वाले। तो जब देते हो तो क्या नहीं करना है, वहां पर गिनती नहीं करना है, हिसाब नहीं लगाना है, मैंने इतना दिया, इसने नहीं दिया। प्रेम जो है वो खरीद फरोख्त नहीं है, क्रय विक्रय नहीं है। लव इज नॉट अ बिजनेस, अनकंडीशनल लव। ऐसा जब अनकंडीशनल लव होता है तब प्रभु की कृपा बरसती है। सौदेबाजी नहीं, सहनशाह हो तुम, बाबा से भी सौदेबाजी करते हैं। बाबा ने हमसे ये कराया नहीं, बाबा ने हमसे पूछा नहीं। गलती करते हैं तो भी एक दूसरे को देखते हैं कि इसने चार किया हमने दो किए, इसने एक किया हमने एक, इसने दो हमने एक, हमने नहीं किया, इसने किया इसके लिए हमने किया। ये सब क्या है, रहम दिल आत्माओं के संस्कार नहीं है। ये दो, ये दे तो मैं दू, ये रहम दिल आत्मा के संस्कार नहीं है। बंगाल में एक संत हुआ है हाजी मोहम्मद, उसके जीवन में दिखाया है कि जब उस एक रात उसे स्वप्न दिखा। हाजी मोहम्मद इसलिए कहते थे उसको क्योंकि 60 बार हज की यात्रा उसने की थी, 60 बार, इसके लिए लोग उसे हाजी मोहम्मद नाम से पुकारने लगे थे। स्वप्न एक दिन रात में देखा कि मर चुका है, एक दो राहे पर खड़ा है और फरिश्ते उससे कह रहे हैं कि एक तरफ जहन्नुम एक तरफ जन्नत। वो सोच रहा था मैंने तो बहुत पुण्य किए, जरूर ही फरिश्ता कहेगा कि जन्नत की ओर, पर फरिश्ता कहता है कि जहन्नुम की ओर जाओ। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं हूँ हाजी मोहम्मद जिसने 60 बार हज की यात्रा की है। फरिश्ता कहता है हाँ पता है, इसके लिए तो कह रहा हूँ क्योंकि इसका पुण्य तुमने वहीं भोग लिया, जहां पर भी जाते थे जिन जिन सभाओं में तुम्हारा परिचय क्या दिया जाता था, ये आए हैं हाजी मोहम्मद, तो वहीं तो पुण्य तो वहीं पूरे हो गए। जैसे वो टाटा बिरला का दिखाते हैं ना, टाटा बिरला ने कौन सा मंदिर बनाया, लक्ष्मी नारायण का। मंदिर किसका है, लक्ष्मी नारायण का। नाम कौन सा दिया है, बिरला। तो बिरला जब पहुंचा बाबा के ऊपर भगवान के पास, तो उसकी भी यही गति हुई। फिर भगवान पूछते हैं मंदिर किसका था, मेरा अर्थात लक्ष्मी नारायण भक्ति में, पर नाम तुमने किसका दिया। तो जब जब जितने लोग पढ़ेंगे बिरला 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 बिरला, तब तक पुण्य सारे पूरे हो रहे हैं। तो हाजी मोहम्मद जब जागता है इस स्वप्न को देखकर, उसके बाद से उसके जीवन में वो दिखाया है छुप छुप के नमाज पढ़ता है। उसमें वो फरिश्ता उसको और एक बात कहता है कि तुमने क्या गलती की, और एक कि जब भी नमाज पढ़ते थे 5 बार, जब आसपास कोई रहता था तो तुम ज्यादा समय पढ़ते थे, और जब मेहमान तुम्हारे घर में आ जाते थे तब तो और ज्यादा देर पढ़ते थे। ये सारों का नोट आज भी बाबा ने कहा है, खाता, बच्चों की लीला बाप दादा देखते रहते हैं, तो वहां सारा खाता और वहां सारी लीलाएं उस टीवी में, अलौकिक टीवी में, वहां का वीडियो सेट में सब नोट होते रहता है। तो कहता है कि तुम ऐसा दिखावा के लिए करते थे। वो स्वप्न जब उसका खुलता है तो वो सोचता है इसके बाद अभी किसी के सामने नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद वो छुप छुप के नमाज पढ़ता है, यहां तक कि नौबत आ जाती कि गांव वाले कहते ये काफिर हो गया है, नास्तिक हो चुका है, क्योंकि वो छुप के पढ़ता था नमाज तब से। दिखावा नहीं तो प्रेम करुणा दया आडंबर नहीं है। जहां आडंबर होगा, दिखावा होगा, दंभ होगा, एग्जीबिशन होगा, शो होगा, डिस्प्ले होगा, वहीं पर पुण्य पूरे होंगे। इसके लिए गुप्त हो। तो ऐसा हमारा स्वरूप हो, ये बाबा ने आज की मुरली में दया के बारे में, कृपा के बारे में हम सभी के लिए कहा है। उसके बाद बहनों से मुलाकात, टीचर से मुलाकात की बाबा ने, क्या कहा उनसे, स्नेही और सहयोगी है। सहयोग क्यों देते हैं? क्योंकि स्नेह है, तो स्नेह है इसके लिए सहयोग स्वतः ही होता है। वास्तव में स्नेह की सहज अभिव्यक्ति जो है वो है सेवा। करुणा भी उसी की अभिव्यक्ति है। करुणा किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी है, जैसे वो दिखावा है, सहज हो। प्रेम इतना भर गया है हृदय में, आनंद इतना भर गया है, जब वो बाहर बह रहा है, उसका जो बाहरी प्रवाह है उसी को करुणा कहा जाता है। उसकी कोई अलग परिभाषा नहीं है। इतना अंदर में भर चुका है कि वो अब बाहर निकाल रहा है, बाहर स्पंदित हो रहा है, उसी को दया कृपा आशीष कहा जाता है। तो ऐसी कृपा तो स्नेही और सहयोगी आत्मा है, साथ है, साथ देने वाली और साथ जाने वाली। पहली दो बातें हो जाए तो दूसरी की तारीख भी, तीसरे की तारीख भी फिक्स हो जाएगी। तो तीनों ही बातों में एवर रेडी। जीवन जिसको दिया है उसी के साथ रहना, जिससे शादी की है उसको छोड़कर किसी और को अपना साजन, पति, माशुक नहीं बनाना। अगर बनाया तो क्या हो जाएगा? तुम इस ओर, हम इस ओर, इस संसार के सारे लोग उस ओर, हम इस ओर, और बीच में झील। झील को मत भूलना इस भट्टी से। एक बाप ही जिनका सब कुछ है, और वो अहम भाव भी वहां पर ना आए पर कि मैं करता हूं, मैंने कहा, हम है ही क्या, कुछ है, कुछ भी नहीं। जो है उसकी कृपा है, उसी की कृपा हम पर हुई है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी होई। राम की कृपा हम पर हुई है, इसके लिए तो सबकी कृपा हो रही है, तो इसे भूलना नहीं, उसी के साथ रहना, उसी के, उसी को साथी बनाना, उसी के साथ चलना, उसी का साथ निभाना। उसके बाद निमित्त भाव, निमित्त भाव कहीं गुम ना हो जाए, निमित्त भाव खो ना जाए। यही तात हो और यही बात हो, और इसी तात और इसी बात को देखकर औरों को भी ऐसी ही तात लग जाएगी। छोटी कुमारियों को बाबा ने याद किया है, बहुत अच्छा। क्या कहा? बहुत अच्छा। उनको तो, उनको देखकर हर्षित हुए, त्याग कर दिया पहले ही, बिना चखे बिना भोगे। बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी समझदारी का काम किया है, समझ का काम। बाबा ने कहा, क्या कहा? समझ का काम है ये, सबसे बड़ा समझ का काम आज के इस संसार में यही है। एक है विकारों में डूबना, विकारों को चखना, विकारों का स्वाद लेना, और फिर उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना। उसके लिए जीवन लग सकता है, क्योंकि पुरुषार्थ कितना भी श्रेष्ठ करो पर उन स्मृतियों का क्या, भोग और वासनाओं की स्मृतियों का क्या करोगे? उसके लिए तो घनघोर तपस्या की आवश्यकता है। सादी तपस्या से नहीं होगा काम। जिन्होंने भोग चुके हैं, जो भोग चुके हैं, द टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, इंग्लिश में कहते हैं, टेस्ट ऑफ सेक्स इज फॉल ऑफ मैन, वहीं से गिरा है। सतयुग और त्रेता, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग में एक ही सीमा रेखा है। काम इधर है, काम उधर नहीं है, बाकी सब बातें छोड़ दो। यहां विकार है, वहां विकार नहीं है, एक ही सीमा रेखा है। जिन्होंने भोगा है उन्हें तो प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। बाबा ने कहा समझ का काम किया है, शाबाश। बाबा की तरफ से कसाईयों से बच गई। दो हफ्ता पहले की, दो संडे पहले की मुरली, कसाईयों से बच गई। तो गर्व करो अपने भाग्य पर, सेवाधारियों से मुलाकात। क्या कहा, टाइम पूरा हो रहा है फिर भी मुरली को पूरा करके रहेंगे। सेवाधारियों को क्या कहा, ये यज्ञ 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 सेवा और यज्ञ सेवाधारी। यज्ञ सेवा का कितना महत्व है, यज्ञ स्थान जो होता है वहां जो धर्म स्थान है उनका कितना महत्व होता है। तो बाबा कह रहे यज्ञ सेवा, इस चैतन्य महायज्ञ के सेवाधारियों का कितना महत्व है। यहां क्या करने आए हो सेवाधारी, डबल मेवा, डबल मेवा। क्यों डबल मेवा, मेवा वो लोग क्या करते हैं, सूखी रोटी दाल रोटी खाते हैं, तुम क्या खाते हो, मेवा। डबल मेवा मैं उनके लिए कह रहा हूं जो तपस्या करने आए हैं, यहां सेवाधारियों के लिए मेवा और जो तपस्या करने आए हैं वो डबल मेवा। जो सेवाधारी है वो लॉटरी, कौन सी वाली, चार प्रकार की लॉटरी गिनाई आज, 100 वाली, 1000 वाली, 1,00,000 वाली और पदम वाली, वो आपके ऊपर है, ये सेवाधारियों के लिए। पर जो तपस्या करने आए हैं, जो भट्टी के लिए आए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, डबल लॉटरी, डबल पद्मा पदम भाग्यशाली। और क्या कहा, डबल कमाई, मनसा की भी और वाचा की। वो हर एक अपना चेक करो कितनी कर रहे हो। और क्या कहा सेवाधारियों के लिए बाबा ने, जितना चाहे उतना सेवा कर सकते हो, अखंड अखूट खजाना है, अखूट भंडार है, बेहद की सेवा है, हद की सेवा नहीं है। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि ये सेवा पूरी हूं अब क्या करूं, इतनी सेवा यहां है। और क्या कहा, निर्विघ्न सेवा, आलस्य का विघ्न, वायुमंडल का विघ्न, किसी संघ का विघ्न इत्यादि, इस तरह का भिन्न भिन्न विघ्न है, संकल्प में भी विघ्न ना आए तब सेवा में सफलता होगी। ऐसी अखंड सेवा, ऐसी निर्विघ्न सेवा हमें करनी है। तो निर्विघ्न सेवा, अखंड सेवा, मेवा, कमाई, लॉटरी और माला माल बनाने वाली लॉटरी, इतनी सारी बातें बाबा ने सेवाधारियों के लिए कही। गुजरात से मुलाकात, पंछी सोने वाला तो टूट गया है पिंजरा, लोहे वाला टूट गया, अभी सोने वाला बाकी है थोड़ा। जो कितना भी सुंदर पिंजरा हो परंतु है तो पिंजरा ही, तो क्या करना, क्या कहना है, किसके बने और किसके है, ये अगर याद रहे तो व्यक्त भाव से परे हो जाएंगे। व्यक्त भाव भी धरनी है, धरनी पे नीचे की आकर्षण आकर्षित ना करे, नीचे आओगे तो शिकारी शिकार करेगा। इसके लिए अब व्यक्त वतन में ऊपर उड़ते रहो, ये देह है, देह से उत्पन्न जो भी सुख है, टच से उत्पन्न जो भी सुख है वो सभी गिराने वाले हैं। टच बॉर्न हैप्पीनेस, इस देह का जहां स्पर्श होगा और सुख उत्पन्न होगा वो सुख धोखा देने वाला सुख है, वो सुख गिराने वाला सुख है, वो सुख वासना पैदा करने वाला सुख है। इसके लिए इस देह को टच ना करना, कैसे ना करना, 1969 की मुरली, संकल्प और नजर से भी टच मत करना। अगर इस देह को, देह रूपी सांप को संकल्प और नजर से भी टच करोगे तो क्या है ये, कौन बताएगा, जो बताएगा उसे इनाम मिल जाएगा। बाबा के महावाक्य, महा 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 पाप है। इस देह को, कुमारों से मुलाकात 1969, अगर इस देह को संकल्प में भी टच करते हो, नजर से भी टच करते हो तो ये क्या है, महा 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 पाप है। क्या बताएगा, हाँ हाँ, तो यही है उत्तर, महा महा महा। इतनी मुरली पूरी कर लेते फिर आप बोलिए, फिर उसके बाद बाबा ने दिल्ली से मुलाकात किया, दिल्ली से बिजनेस, जितने संपर्क बढ़ेंगे उतने संदेश सुनने वाले भी आ जाएंगे, तो ये शेयर लेना है। फिर उसके बाद में हो गया पूरा, दिल्ली, गुजरात, सेवाधारी, टीचर्स और पूरी मुरली। मुरली में एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा हुआ है, कौन सा, किसको याद है? जो यहां आए ही नहीं है उन सभी के पत्रों का एक ही उत्तर है, कौन सा? वो बाप को याद कर रहे हैं, बाप उन्हें पदम गुना याद कर रहे हैं, बाप वो दिन गिन रहे हैं, बाप उनके गुणों की माला का स्मरण कर रहे हैं, उनका संकल्प है बाप से मिलन मनाने का। और बाप का क्या है, दो बातें, कौन सी दो बातें? अमृत वेले मिलन मनाते हुए क्या करते हैं, मिलन का रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर देते हैं, और एक चीज करते हैं, सेवा की क्या करते हैं, विशेष संकल्प देते हैं ऐसे बच्चों को अमृत वेले। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, सभी ने इतने प्रेम से, इतनी एकाग्रता से, इतनी तन्मयता से बाबा के इस मुरली को सुना, बाबा के इस अमृत वचन को सुना। यहां सभी आए, सभी ने तपस्या की और यहां से श्रेष्ठ संकल्प लेकर जा रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को बधाई, हमारी तरफ से, मधुबन की तरफ से हम आप सबके आभारी भी हैं। और इस मुरली का अंत करते हुए, यहां पर इसको पूरा करते हुए बाबा ने जो याद प्यार दिया है उतना कहकर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। ऐसे दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले बच्चों को, ऐसे देने वाले नहीं परंतु लेने वाले नहीं परंतु देने की कामना रखने वाले, लेने वाले नहीं देने की कामना रखने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी स्थिति में रहने वाले, राजवंश संस्कार वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। हम कहां बैठे हैं? पांडव भवन में। और पांडव भवन कैसे बना? जैसे हम आत्माओं का बीज बाबा है, तो वैसे जैसे हम भूमि पर बैठे हैं उसका पर तो बीज जानना चाहिए, तो उसका बीज बाबा ने बताया मुरली में कि पांच विकार स्त्री के और पांच विकार पुरुष के। जो भी आत्मा पांडव भवन आती है वो यहीं भस्म कर देती है, उसे कहते हैं पांडव भवन। और मनुष्य आत्मा पांच युग को नहीं जानती और वही है संगम युग। जो स्त्री पांच विकार को और जो पुरुष पांच विकार को यहां दफन करके जाते हैं वही दोनों रूह सत्योग में जन्म ले सकती है और कोई ले न सके। ओम शांति।
कहीं कभी और सुनाएंगे। बाइबल में एक जगह जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, आई हैव पिक्ड यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई हैव पिक्ड यू अप फ्रॉम दिस वर्ल्ड फॉर यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। एक एक को मैंने तुम्हें चुना है, इस दुनिया से एक एक को चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे चुना नहीं है, मैंने तुम्हें चुना है। उसी तरह हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने स्वयं चुना है और हमें विशेष इस जीवन में यह बहुत बड़ा नशा है कि स्वयं भगवान ने हमें चुना है। इस जीवन में हमने जो पहली मुरली सुनी, पहली मुरली वो स्वयं अव्यक्त भाव दादा से सुनी। पहला हमारा जो सेवा केंद्र है वो मधुबन, हमारा जो जन्म हुआ वो अव्यक्त बाप दादा के दृष्टि और बोल के द्वारा हुआ। आते ही हमारी जो पालना हुई वो इस मधुबन में। ओम शांति।
ओम शांति। सब कहाँ पहुंच गए? सुनते सुनते सब कुछ भूल कर बैठे हैं, इतने लीन हो गए हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर सचिन भाई का अनुभव भी है, स्थिति भी है, चिंतन भी है, चिंतन से स्थिति तो बनती, वंचन भी है, सब कुछ बाबा ने विशेषता दी है जो सबको शेयर कर रहे हैं। आज दोबारा बुलाया, आप सभी की खास डिमांड थी और आपने हाजी करके पहुंचे। बहुत बहुत दिल से सभी ने पहले से ही तालियां बजाकर धन्यवाद अर्पित कर दिया। अनेकों की दुआओं से आप भी बहुत बहुत और भी प्रगति करते रहे। बाबा भी आपसे बहुत सेवाएं, विशेष सेवाएं लेते रहे और आपका सारे कल्प के लिए बहुत ऊंचा भाग्य बन जाए, ऐसी बाबा की ओर से और सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से शुभकामना है। थैंक्स बहुत बहुत। आज है भट्टी का लास्ट दिन, कल्प में पहले जो इकट्ठे हुए थे, मिले थे और बिछड़े थे, आज फिर से वो ड्रामा की रील रोल हो गई।